पृष्ठ संख्या 54, 6। भक्ति काल के प्रमुख कवियों के विवेचन के पश्चात इस काल के अन्य सहयोगी कवियों का उल्लेख उचित होगा। जैसे एक कविता अपने में पूरी कविता प्रायः नहीं होती, अंशों में होती है और यह अंशों की कविता फिर पूरी रचना में पर्याप्त हो जाती है, वैसे ही लेखक के समग्र कृतित्व की स्थिति है। कुछ ही रचनाओं का वैशिष्ट्य उसके समग्र लेखन को आलोकित करता है। अगले चरण में यह प्रक्रिया इतिहास के युग विशेष में प्रतिफलित होती दिखती है, जहां बहुत बार विशिष्ट रचनात्मक व्यक्तित्व को केंद्र में करके उसके आसपास अनेक गौण लेखकों का कृतित्व दीप्त हो उठता है। संत और सूफी या कि अष्टछाप के कवियों के वृत्त इसी रूप में सृजनात्मक हुए हैं। आधुनिक काल के आरंभिक चरण में भी अलग अलग लेखकों की रचनाएं बहुत बार अपने में महत्वपूर्ण भले न हो, पर एक वृत्त रूप में उस लेखन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साहित्य के इतिहास में युग की परिकल्पना भी इससे बनती है कि एक विशेष अवधि में कुछ खास तरह की रचनाएं अलग अलग पृष्ठभूमि के लेखक करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में भक्ति काल को कई शाखाओं उप शाखाओं में विभाजित किया है। पहले दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण काव्य की। फिर निर्गुण धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी। सगुण धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवि आते हैं, जिनमें केंद्रीय व्यक्तित्व कबीर का है, जिसका विस्तार में विवेचन हो चुका है। इस शाखा के फिर अन्य कवि हैं स्वामी रामानंद, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, धर्मदास, दादू, रज्जव, मलूकदास, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई। अधिकतर समाज की नीची समझे जाने वाली जातियों से आए हुए ये कवि स्वभाव से भ्रमणशील थे। यद्यपि मूलतः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आए थे, जिसका प्रमाण उनकी भाषा की मिली जुली प्रकृति से भी मिलता है। इस काव्यधारा में कई संप्रदायों से संबंध कवि है। प्रेम मार्गी सूफी कवि धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टि से अधिक एक रूप है। जायसी के काल जय महाकाव्य पद्मावत के वैशिष्ट्य का कुछ विवेचन किया गया है। प्रेम कथा को आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले अन्य कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतबन, मंझन, उस्मान। इनका अधिकतर काव्य अवधि में रचा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ विशिष्ट कवियों को धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अष्टछाप नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत वल्लभाचार्य के चार शिष्य और चार उनके पुत्र गोसाई विठ्ठलनाथ के माने जाते हैं। ये आठ कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इस अष्टछाप की प्रतिष्ठा गोसाई विठ्ठलनाथ ने की। आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा कभी कभी ही भावुकता के दबाव में अलंकृत होती है। अष्टछाप की चर्चा ऐसे विरल प्रसंगों में से एक है। सूरदास और वल्लभ संप्रदाय के आविर्भाव का विवेचन करते हुए आलोचक लिखता है, आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूर के अतिरिक्त अन्य कवियों की वाणी भी भले आंशिक रूप में जन समाज में लोकप्रिय हुई। कुंभन दास की ठसक का परिचय उस पद में मिलता है जो उन्होंने अकबर बादशाह के दरबार से लौटते में गाया था। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। हरि स्मरण में बाधा और जूतों के टूटने का अटपटा लगता समीकरण कवि के गहन भक्ति भाव को ही प्रमाणित करता है। परमानंद दास और भी ऊंचे दरबार की उपेक्षा कर देते हैं। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तजी मेर जाए बलाए। वाग वैदग्ध्य और तन्मयता का विलक्षण संयोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अधिक मिलता है। एक अत्यंत लोकप्रिय पद में कृष्ण वर्ण की व्याख्या इस रूप में हुई है, जसोदा ने कारी अंधेरी में जायो, ताते कारो ही रंग हरि पायो। यहाँ व्यंजना कुछ और दूर जा सकती है, कृष्ण काली अंधेरी रात में जन्मे, इसलिए उनका वर्ण ही कृष्ण नहीं हुआ, उनका पूरा चरित्र वैसा ही रहस्यमय बना। दूसरी ओर राम का जन्म है मध्य दिवस अति सीत न घामा। हिंदी साहित्य के दो उपजीव्य चरित्रों का जन्म एक दूसरे के विपरीत समय पर होता है। कृष्ण भादु की प्रखर वर्षा वाली अंधेरी काली आधी रात में जन्म लेते हैं। राम चैत्र के शांत मास में ठीक मध्यान्ह के समय वैसा ही उनका चरित्र है, सर्वत्र प्रकाशित, कहीं कुछ संदेह और अस्पष्टता नहीं। एक पक्ष में लीला है, दूसरे में मर्यादा। इन कृष्ण घाट और राम घाट के बीच से हिंदी काव्यधारा प्रवाहित होती आई है। आचार्य शुक्ल की अलग अलग प्रयुक्त शब्दावली में तुलनात्मक विवेक करते हुए कहें तो राम के चरित्र में समन्वय भावना और संतुलन है तथा कृष्ण के चरित्र में है विरुद्धों का सामंजस्य। रचनाकार के लिए आसानी किसी और नहीं। एक तरफ राम के सीधे सरल चरित्र में कुछ बनाना कठिन है तो दूसरी ओर कृष्ण चरित्र के परस्पर विरोधी पक्षों को साधना मुश्किल। पर भक्त कवियों की यही मुख्य रचना भूमि है। कृष्ण भक्ति के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, रसखान तथा नरोत्तम दास, जिनका सुदामा चरित्र बहुत लोकप्रिय रहा है। पृष्ठ संख्या 56। अष्टछाप से संबद्ध दो वार्ता ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें वल्लभाचार्य के पौत्र और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ का लिखा बताया जाता है। इन ग्रंथों में वैष्णव भक्तों और कवियों के वृत्त दिए गए हैं। बहुत कुछ जिनके आधार पर कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की जीवनी आकी जाती है। ये ग्रंथ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। भक्त कवियों की जीवन वृत्त संबंधी सामग्री देने के अतिरिक्त इन ग्रंथों का महत्व इसमें भी है कि उनके माध्यम से ब्रज भाषा के साहित्यिक गद्य का कुछ स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जैसे शेष सब कुछ उसी में समा गया हो, यदि उनके रामकथा वर्णन से शेष कुछ बचा हो तो। इसलिए इस शाखा में फिर गौण कवियों की स्थिति नहीं रह जाती। यों भी कृष्ण कथा में जैसा वैविध्य है और जितने उसके रंग हैं, वैसी स्थिति राम कथा की नहीं। राम कथा में टेढ़ी लीला पंक्तियां बनाना आसान तो नहीं, रुचिकर रहा है, पर राम कथा की सीधी मर्यादा पंक्ति खींचने का कठिन काम उतनी ही सफलता के साथ अकेले तुलसीदास कर सके हैं।